بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. جیسے کہ آپ سے وعدہ کیا گیا تھا اور کچھ مومنین کے تقاضے کی بات جو ہے ہم ایک ٹاپک شروع کرنے جا رہے ہیں جو اصل میں اسلام یعنی قرآن و عترت یعنی قرآن و پیغمبر و محمد و آل محمد صلی اللہ وسلم علیہ کی تعلیمات میں خواتین کی تعریف کیا ہے، خاتون کی، ایک عورت کی تعریف کیا ہے، اور پھر جو دیگر مختلف مکاتب فکر ہیں دنیا کے اندر، جو سوچیں ہیں، جو نظریات ہیں، جو ایزمز ہیں، اور خاص کر جو فیمنیزم کی ایک مومنٹ ہے، وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، یہ بیسکلی ہمارا تھیم ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے ڈسکس کریں. سب سے پہلے ہم جائیں گے، ظاہر ہے بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، مین باتیں جو ہیں وہ عرض کریں گے آپ کی خدمت میں. اسلام یعنی قرآن اور پیغمبر اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات میں عورت کی تعریف کیا ہے، خاتون سے مراد کیا ہے، قرآن کیسے اس کو ڈیفائن کرتا ہے. عورت سے مراد جو ہے قرآن کی اور اہل بیت علیہم السلام کی نگاہ میں انسان کی قسموں میں سے ایک قسم ہے اور صنف ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، جینڈر بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ جو ہے مرد کی اپوزٹ سائڈ پہ آ جاتی ہے، اور جیسے کہ مرد عورت کی اپوزٹ سائڈ پہ آ جاتا ہے. دونوں میں منہی سے انسان کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کی حقیقت ایک ہے، اور وہ جو ایک اوریجنالٹی یا ریالٹی یا حقیقت کہیں وہ ایک ہی ہے، وہ ہے انسان ہونا. یعنی قرآن مجید عورت اور مرد کو پہچنواتے وقت مرد اور عورت کے عنوان سے نہیں پہچنواتا، بلکہ انسان کے عنوان سے پہچنواتا ہے. ان کی جو قرآن مجید جو بھی جس طرح مخاطب کرے گا تو کوئی الگ مخلوق کے طور پہ عورت کو اور الگ مخلوق کے طور پر مرد کو نہیں پہچنواتا، کہتا انسان ہے، دونوں انسان ہیں. اس کی جو بیسک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید جو ایک انسان کی اوریجنالٹی ہے یا حقیقت ہے، اس کو اس کی روح قرار دیتا ہے، نہ کہ اس کا جسم. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ تعلیمات قرآن عترت میں ایک جسمانی کمی کا شکار انسان کو غیر کامل نہیں کہا جاتا. مثلا ایک انسان اگر اس کا پاؤں نہیں ہے یا ہاتھ نہیں ہے تو قرآن اس کو ایک غیر کامل انسان نہیں کہتا ہے، کیونکہ کمال کا تعلق اس کی باڈی اور جسم سے نہیں ہے. جسموں کے اگر پورے حصے موجود ہو، ہاتھ بھی صحیح ہوں، پیر بھی صحیح ہوں، آنکھیں بھی ٹھیک ہوں، تو ہم کہیں ہاں یہ کامل انسان ہے. ایسا نہیں ہے قرآن مجید میں، بلکہ روحانی اور کریکٹر کے اعتبار سے اسے کامل ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جس کے ہاتھ پیر سب کچھ اچھے ہوں، 6.5 فٹ کا قد ہو، بہت اچھے چوڑے شانے ہوں، لیکن ان دا سیم ٹائم قرآن اور عترت اور پیغمبر کی جو ہے تعلیمات کے مطابق وہ کامل انسان نہ ہو، بلکہ ایک ناقص انسان ہے. ناقص نہیں کہ جسمانی طور پر، کریکٹر کے اعتبار سے، اسپرچول اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے اور دیگر اعتبار سے. اسی طرح پاسبلٹی ہے کہ ایک آدمی اندھا ہو، جیسے کہ تھے بہت سارے. ایک آدمی کا مثلاً ہاتھ ٹھیک نہ ہو، ایک ہاتھ نہ ہو یا پاؤں نہ ہو، ممکن ہے بالکل اپاہج ہو، پیرالائز بیٹھا ہو، لیکن وہ کامل ہو کریکٹر وائز اور جو ہے روحانی اعتبار سے اور کردار کے اعتبار سے. لہٰذا ایک اندھا، ایک لولا، لنگڑا بھی انسان کامل ہو سکتا ہے اور ہو سکتی ہے. اگلا کوشچن یہ ہے کہ کون برتری رکھتا ہے، مرد یا عورت؟ کون افضل ہے، مرد یا عورت؟ اسلام مرد اور عورت میں سے کسی کو کسی پر برتری نہیں دیتا، کسی کو کسی پر فضیلت کے لیے قائم نہیں ہے. دونوں کو کہتا ہے ہیومن ہیں، دونوں ایکول ہیں، برابر ہیں. قرآن و عترت میں برتری، بڑائی اور فضیلت میں کہیں پر بھی فیمیل اور میل کی بات نہیں ہو رہی ہے، مذکر اور مؤنس کی بات نہیں، جینڈر کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ کیا چیز ہو رہی ہے، کردار کی بات ہو رہی ہے. کردار اگر جس دونوں میں سے، میل فیمیل، مرد عورت، جس کا کردار اچھا ہوگا وہ کیا ہوگا قرآن و عترت کی نگاہ میں، وہ برتر ہے، وہ افضل ہے، وہ بڑائی رکھتا ہے. یعنی فضیلتوں اور برتری اور بڑائی میں مرد ہونا یا عورت ہونے میں کسی قسم کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کہ کوئی ہمارے ہاں جو ایک سوسائٹی میں ایک پرسپشن ہے، ایک نظریہ ہے کہ بھئی لڑکا پیدا ہوا ہے تو اچھا ہوا ہے، بڑائی ہے اس میں، فضیلت ہے اس میں، اچھائی ہے، لڑکی ہے تو نہیں ہے. یہ غلط تصور ہے، اس کی کوئی جو ہے حقیقت نہیں ہے. مثال کے طور پر قرآن مجید میں، میں نہیں چاہتا بہت زیادہ آیتوں کی ڈیٹیل میں جائیں، کچھ مثالیں دیتا ہوں. قرآن مجید میں مثلا قرب خداوندی، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا، مقرب بندہ ہونا، جب اس کی آیتیں آتی ہیں تو اس میں نفس مطمئنہ کی بات ہو رہی ہوتی ہے، نہیں بات ہو رہی ہے کہ اے مذکر نفس مطمئنہ،
ए मेल नफ्स मुतमईना या ए फीमेल नफ्स मुतमईना, ये बात नहीं हो रही है। या अय्यतुन नफ्सुल मुतमईना, मर्द हो औरत है दोनों के लिए हो सकता है, दोनों अल्लाह के मुकर्रब बंदे हो सकते हैं, दोनों को एड्रेस कर रहा होता है। या मसलन कुरान मजीद में कह रहा है इजा सअलक इबादी अन्नी अन्नी फइन्नी करीबुन, तो मर्द हो या औरत हो दोनों के लिए कहा है, इबादी है अल्लाह के बंदे मर्द भी औरत भी। या फरमाया कि वो लोग जो कि मन अतल्लाहु बिकल्बिन सलीम, जो एक साफ और पाक और पाकिजा करेक्टर के साथ दिल के साथ हमारे पास आ जाए, कौन मर्द आए, मन अतल्लाहु कौन मर्द आएगा या औरत, दोनों के लिए कुरान मजीद ने मुखातब की, नहीं कहा मर्द आए तो औरत आए तो नहीं, दोनों दोनों की बात हो रही है। मलाइका के बारे में है कि वो न मेल है न फीमेल है, क्योंकि वो एक रूह की परतों हैं, समझने के लिए रूह की परतों की तरह है। बस एक बात जो समझने की वो ये है कि कुरान और इतरत की तालीमात में, पैगंबर व आले पैगंबर की तालीमात में मुजक्कर मुअन्नस फीमेल मेल होने का ताल्लुक इंसान की क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों जो है क्या है कि हकीकत एक है, वो इंसान होना है, करेक्टर के एतबार से बरतरी और फजीलत की बात होगी। रूहानी सलामती और पाकिजगी पर इन्हिसार करता है, न जिस्मानी बरतरी पर, जिस्म जिसका बहुत अच्छा है, अच्छे स्ट्रक्चर बना हुआ है, अच्छा डिजाइन है, उसने बॉडी बिल्डिंग की हुई है, बस वो दूसरों से बरतर और अफजल है, ये बात नहीं है। या कोई स्ट्रांग है जिस्मानी तौर पर, कोई वीक है, क्योंकि औरत को सिर्फ नाजुक कहा जाता है, इसलिए मैं ये बात ला रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। हयात तय्यब के बारे में फरमाया कि बेहतरीन जिंदगी मन अमला सालिहन मिन दकरिम व उनसा, क्लियरली कहा कि देखें हयात तय्यब मर्द हो या औरत दोनों में से कोई भी हासिल कर सकता है, दोनों बराबर हैं, दोनों को हुस्न फैल यानी अमल साले, हुस्न फाइल यानी ईमान की बराबर जरूरत है, यानी दोनों को ईमान की जरूरत है, दोनों को अमल साले करने की जरूरत है, दोनों में से जो अच्छा ईमान रखेगा, जो अमल साले करेगा, वो अल्लाह का मुकर्रब बंदा होगा। बस एक अहम पॉइंट जो यहाँ पर है वो ये है कि बस इंसान की हकीकत और ओरिजिनलिटी इसकी रूह से है न जिस्म से है, क्योंकि रूह का असल जेंडर का ताल्लुक यानी क्योंकि रूह असल है और जेंडर का जो ताल्लुक है यानी सिंफ का जो ताल्लुक है वो जिस्म से है न कि रूह से है, लिहाजा कुरान करीम मर्द और औरत को उस हवाले से यकसां और बराबर मसावी इंसान करार देता है, और रूह की तरक्की अच्छाई नेक होने को इंसान की फजीलत करार देता है, अब मर्द हो जाए औरत हो जाए। और इस्लाम में कमाल और परफेक्ट जो मैन है उसके एतबार से इंसान को मर्द और औरत के तौर पर नहीं जज करता, बल्कि इंसान को मिनहे से इंसान जज करता है। जबकि दूसरी जो तशरीहात हैं उन तशरीहात में, दूसरी जितने इज़म्स हैं, ख्यालात हैं, थॉट्स हैं, उनमें खासकर मगरबी तालीमात में इंसान को डिवाइड किया जाता है पहले दो पार्ट्स में, मर्द और औरत, फिर उनमें इक्वालिटी और बराबरी को तलाश किया जाता है, और फिर सिमिलरिटीज तलाश करते हैं, क्योंकि उनकी सोच और जो तर्ज फिक्र है, उनका जो स्कूल ऑफ थॉट है, जो जिस तरीके से वो सोचते हैं, उसमें इंसान की हकीकत उसके सिंफ और जेंडर में है, यानी उसके जिस्म में समझी गई है, जिस्म के दबार से तो स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट है, इसलिए लिहाजा वो डिवाइड करते हैं, लिहाजा पहले जिस्म को तकसीम किया जाता है, फिर उसके हुकूक की बात होती है, फिर उसकी तालीम तरबियत की बात होती है, और इस जैसे मसाइल को डिस्कस किया जाता है, क्योंकि इन मसाइल को वो सिर्फ जिस्मानी रिक्वायरमेंट्स और तकाजे और उसके स्टैंडर्ड को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं, लिहाजा उसी को लेकर कहते हैं इक्वालिटी होनी चाहिए, सिमिलरिटीज होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए, मसावात होना चाहिए, ये जो बातें हो रही है इसी वजह से हो रही हैं। वो इंसान की असलियत और हकीकत की तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं करते, लिहाजा जिस्म को मेयार बनाकर डिजाइन किए गए जितने भी उसके प्रोग्राम्स होते हैं, सोशल, पर्सनल, एजुकेशनल, जो भी हैं, ऐसे हैं आप देखते हैं जैसे किसी जानवर की तरबियत करना मकसूद हो, जैसे किसी जानवर को ट्रेन कर रहे हो, इस तरह ह्यूमन को भी वो डील कर रहे होते हैं। चले हम यूं कहते हैं कि जानवर में आला क्वालिटी और आला जो नस्ल के जानवर हैं, यानी इंसान की जरूरियात को पेश नजर रखकर वो जो है कवानीन को डिजाइन करते हैं। लास्ट में हम आते हैं इस एपिसोड में, फेमिनिज्म क्या है, फेमिनिज्म क्या है, मतलब देखे डिफरेंट आरा और राय पाई जाती हैं, बहुत से लोग इस लफ्ज को लेकर थोड़ा सा उनके पास जो है तहफुजात हैं, खाइब भी हो जाते हैं, साथ साथ इस लफ्ज के कई मनफी रवैये और गलत फहमियां भी जुड़ी हुई हैं, बेसिकली ये इस्तेलाह फ्रांस से शुरू हुई, फ्रांस के एक मैगजीन में एक खातून ने आर्टिकल लिखा, वहां से ये शुरू हो गई। और फिर और हम ये कह सकते हैं बुनियादी तौर पर ये मूवमेंट उठी ही मगरबी दुनिया और यूरोप के अंदर से उठी है, जहां पर औरत की मजलूमियत के एक रिएक्शन के तौर पर ये मूवमेंट बन गई और ये एक बड़ी मूवमेंट की शक्ल अख्तियार कर गई, यूरोप से फिर बाकी दुनिया की तरफ भी फैलती चली गई। ये बेसिकली जब बुनियादी तौर पर स्टार्ट हुई थी तो डिफरेंट मीनिंग्स इसके जो है और डिफिनेशंस दी जा रही थी उस वक्त, और कहने लगी जी कि मर्दों के जो अंडर कंट्रोल सोसाइटी है इसमें वुमेन राइट्स जो इख्तियारात और उनकी जो उनके लिए जो इंसाफ का है वो है, वो जो है पूरी हासिल नहीं हो रही है। लिहाजा उन्होंने एक जद्दोजहद शुरू कर दी और एक पुरकशिश अट्रैक्टिव इसको स्लोगन बना लिया, और फिर डे बाय डे, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस ये चेंज होते गए इसकी जो डेफिनेशंस हैं। फ्रांस में अलबत्ता इस मूवमेंट ने वुमेन राइट्स के लिए और काफी अच्छी पॉजिटिव रोल प्ले किया उस जमाने में, और 20वीं सदी के आगाज में तकरीबन ये इस्तेलाह बरतानिया में आई, वहां पर इसकी फिर एक अलग तशरीहात होने लगी लोकल रिक्वायरमेंट के अतबार से, और फिर 1920 के आसपास में ये अरब दुनिया के अंदर मुस्लिम टेरिटरी में आ गई। सबसे पहले इजिप्ट में गालिबन ये पहुंच गई, जहां फ्रेंच कॉलोनी थे वो इलाके, तो उसके साथ जो है ये वहां पर भी पहुंच गई, और अरबी में इसका डिफरेंट तर्जुमे किए गए, उनमें से एक था निसाई या मसलन खवातीन, जिसको कहें खवातीन का मूवमेंट या औरत मूवमेंट कहें, जो भी नाम दे दें। लिहाजा जो है जो फेमिनिज्म की टर्मिनोलॉजीज और डिफिनेशन फ्रांस में थी, फिर जो ब्रिटेन में आ गई, फिर जो अमेरिका में आ गई, दीगर यूरोपियन कंट्रीज में आ गई, और वो डिफिनेशन जो अरब कंट्रीज में, मुस्लिम कंट्रीज में आ गई, उसमें बहुत ज्यादा फर्क नजर आएगा। फिर साउथ एशिया के अंदर यानी हमारे पास जब आ गई तो वो और जो है डिफरेंट मीनिंग्स इख्तियार कर गई। जाहिर है कि उसके अंदर लोकल जो एक कल्चर है और लोकल जो एक लोगों के पास नजरियात है, थ्योरीज है, उसके हिसाब से चलने लगी। लिहाजा हमें इसको बड़े डीपली एनालाइज करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें इसकी इतनी सारी तशरीहात और इतनी सारी शक्लें बनी हैं कि इनकमिंग इंशाल्लाह जो एपिसोड है उसमें हम इसमें डीपली डिस्कस करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।